नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच पुनर्विकास योजना के पहले चरण के तहत 1117 बेड वाले दो टावर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मुंबई में चल रहे वेब्स सम्मेलन में आज भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को जुलाई महीने तक पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कल पटना में रंगारंग और भव्य शुरुआत होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच पुनर्विकास योजना के पहले चरण के तहत निर्मित अस्पताल भवन के दो टावर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस भवन में मरीजों के लिए 1117 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
पहले चरण में 65 आईसीयू और 44 पोस्ट आईसीयू के साथ ही विशेष कक्ष भी उपलब्ध होंगे। इस चरण में कुल 2527 बेड की सुविधा रहेगी। इसमें 160 करोड़ रुपए के उपकरण ओपीडी और इमरजेंसी में लगाए गए हैं। अस्पताल के तीसरे टावर को आगामी सितंबर महीने और चौथे टावर को अगले साल तक शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल बनने वाले पीएमसीएच में कुल 5462 बेड वाले नए भवन का तीन चरणों में निर्माण होना है। इन पर कुल 5460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
और अब खबरें वेब्स सम्मेलन की। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 के तीसरे दिन आज श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। ये पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वेब्स के दौरान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सांख्यिकीय पुस्तिका भी जारी की जाएगी। वेब्स में आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जुड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सामुदायिक रेडियो में नवाचार के माध्यम से इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक सामुदायिक रेडियो खोलना है। सम्मेलन के दौरान कई सत्र होंगे जिसमें सामुदायिक रेडियो की बदलती भूमिका पर कई वरिष्ठ लोग अपने विचार साझा करेंगे। देश भर के 400 से अधिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12 उत्कृष्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को उनकी और समुदाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।
ये जानकारी साझा कर रहे थे हमारे संवाददाता दीपेंद्र। मुंबई में आयोजित किए जा रहे वेब्स शिखर सम्मेलन के पहले दो दिन में वेब्स बाजार में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो और वीएफएक्स क्षेत्रों में अब तक 254 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया कि यह आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों को जुलाई महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक और विभागीय प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में कहा कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने की व्यवस्था करें। इधर निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में 30 जून तक पूरी की जाएगी। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच का निर्देश दिया है। अब खबरें खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। खेल स्पर्धाओं के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की कल पटना में रंगारंग और भव्य शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया पाटलिपुत्र खेल परिसर में शाम 6 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। 15 मई तक चलने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10,000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कल से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए देश भर के विभिन्न शहरों से खिलाड़ियों का जत्था अलग अलग मेजबानी वाले शहरों में पहुंचने लगा है। बिहार के 5 शहरों और नई दिल्ली में 28 प्रकार की खेल स्पर्धाएं 15 मई तक आयोजित होंगी। बिहार पहुंचने पर खिलाड़ियों के दल का भव्य स्वागत किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह स्थल पर आकर्षक रोशनी, लेजर शो आकर्षण के केंद्र होंगे। उद्घाटन समारोह को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। बिहार की परंपरा, विरासत और इतिहास का दर्शन करने का यह आयोजन एक सुनहरा अवसर होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
खेलो इंडिया में शामिल हो रहे खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। रग्बी खिलाड़ी मोहम्मद अरमान आलम ने कहा कि इस बड़े आयोजन से बिहार में खेलों का वातावरण और बेहतर बनेगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इससे बहुत सारे न्यू प्रतिभाओं को मौका मिलेगा और वो बहुत बड़े मतलब इंडियन लेवल तक में वो खेल सकते हैं, जैसे रग्बी में और बहुत सारे गेम है, वुशू भी है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, तो यहाँ सारे गेमों का हो रहा है, तो इससे हमारे बिहार के प्लेयरों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है।
तो कल से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ, आप भी तैयार हो जाइए इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। मीडिया से बातचीत में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि वे मध्यस्थता प्रक्रिया में चर्चा कर सकें और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सकें। आकाशवाणी से बातचीत में कानून और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय अरोड़ा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए वादी को मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसमें मार्च 2025 का सेवा व्यापार भी शामिल है। रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें पिछले वर्ष के 778 अरब डॉलर की तुलना में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सेवा निर्यात 13.5% से बढ़कर 387 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के पहले के अनुमान से अधिक हैं। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
3 मई के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिणी भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, तत्पश्चात गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में पशुओं को मुंह पका खुरपका रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान घर घर जाकर पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। विभाग ने किसानों और पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने गाय भैंस को रोग निरोधी टीका जरूर लगवाएं। भागलपुर जिला धान अधिप्राप्ति के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में अब तक 6 मीट्रिक टन से अधिक धान अधिप्राप्ति हुई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में भागलपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई। इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि जिले में सब्जी उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, इसलिए प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपस में समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पटना में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की बैठक में हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम और संविधान सुरक्षा अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने और लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। देश भर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य में 142 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तान का सीधा हाथ, मिले पुख्ता सबूत। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की खबर का शीर्षक लगाया है, बिहार में बड़े बदलाव का साक्षी बना 20 वर्ष। दैनिक भास्कर लिखता है, सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को 4 दिन की रिमांड पर लिया। प्रभात खबर की सुर्खी है, कल से 28 खेलों के साथ बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, पाक पीएम का यूट्यूब अकाउंट भारत में ब्लॉक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच पुनर्विकास योजना के पहले चरण के तहत 1117 बेड वाले 2 टावर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मुंबई में चल रहे वेब्स सम्मेलन में आज भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को जुलाई महीने तक पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कल पटना में रंगारंग और भव्य शुरुआत होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।